दिन भर 7 अक्टूबर दिन बुधवार, मैं हूं रेहान फतल। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सांप्रदायिक तनाव की घटनाओं पर चिंता जताते हुए सहनशीलता की अपील की।
We cannot allow the core values of our civilization to be wasted।
चर्चा होगी बिहार के युवा मतदाताओं की और दुनिया जहान में देखेंगे फेसबुक अविकसित देशों के गरीब लोगों को क्यों देना चाहती है मुफ्त इंटरनेट।
बात ऐसी है कि फेसबुक इंटरनेट नहीं है, पर ये कोशिश की जा रही है कि वो इंटरनेट बन जाए, कि लोगों को फेसबुक के बाहर कुछ पता ही नहीं लगे और इससे फेसबुक का ज्यादा डोमिनेंस होगा।
लेकिन पहले अंतर्राष्ट्रीय समाचार।
बीबीसी समाचार अशोक कुमार से। उत्तर प्रदेश के दादरी में गौमांस की अफवाह पर अखलाक अहमद नाम के एक व्यक्ति की हत्या के करीब एक सप्ताह बाद राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि लोगों को देश में विविधता का सम्मान करना चाहिए और एक दूसरे के प्रति सहिष्णुता दिखानी चाहिए। दूसरी तरफ जाने माने कवि और आलोचक कैलाश वाजपेयी ने जीवन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हो रहे हमलों का हवाला देते हुए साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटाने की घोषणा की है। कल जानी मानी लेखिका नैन तारा सहगल ने भी ऐसी ही घोषणा की थी। रूस ने कहा है कि उसने कैस्पियन सागर में अपने युद्ध पोतों से सैकड़ों किलोमीटर दूर सीरिया में इस्लामिक स्टेट के ठिकानों पर 26 मिसाइलें दागी हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसके लिए रूसी सेना की तारीफ की है। बेशक सीरिया में कार्यरत पायलट और कैस्पियन सागर में युद्ध पोत पर तैनात हमारे नौसैनिक तारीफ के हकदार हैं। हमने कैस्पियन सागर से 1,500 किलोमीटर दूर लक्ष्य को सटीकता से भेदने वाले हथियारों के जरिए ठिकानों को निशाना बनाया है। इससे रक्षा उद्योग और सैनिकों की ट्रेनिंग की दक्षता पता चलती है। ये थे रूसी राष्ट्रपति पुतिन के शब्द। पुतिन ने बताया कि जिन 11 ठिकानों को निशाना बनाया गया वो सभी हमले में तबाह हो गए। हालांकि इसकी स्वतंत्र रूप से पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। पश्चिमी जगत यह कहकर रूस के हमलों का विरोध कर रहा है कि वो सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद के उदारवादी विरोधियों को भी निशाना बना रहा है। रूस इससे इनकार करता है। इस साल रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों टॉमस लिंडाल, पॉल मॉडरिश और अजीज सेंकर को दिया जाएगा। उन्हें ये पुरस्कार डीएनए की मरम्मत पर उनके शोध के लिए दिया जा रहा है। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में हुई गोलीबारी में देश के राष्ट्रपति हसन शेख मोहम्मद के भतीजे लिबान उस्मान की मौत हो गई है। संवाददाताओं का कहना है कि मोगादिशु में हाल के बरसों में सुरक्षा की स्थिति बेहतर हुई है, लेकिन चरमपंथी संगठन अल शबाब के हमले समय समय पर होते रहते हैं, जिनमें आमतौर पर राजनेताओं को निशाना बनाया जाता है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने अपनी जर्मनी यात्रा रद्द कर दी है। उनके इस फैसले की वजह इसराइल और पश्चिमी तट पर सुरक्षा स्थिति को माना जा रहा है। आज इसराइल में चाकूबाजी की अलग अलग घटनाओं में 3 इसराइली घायल हो गए। इसके अलावा पिछले हफ्ते इसराइलियों और फिलिस्तीनियों के बीच भी झड़पें तेज हुई हैं। और यूरोपीय संघ ने भूमध्य सागर के रास्ते होने वाली मानव तस्करी को रोकने के लिए एक अभियान शुरू किया है। इस काम में 6 युद्धपोत लगाए जाएंगे, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा में नौकाओं की तलाशी लेने, तस्करों की नाव जब्त करने और नौकाओं पर सवार लोगों को बचाने की जिम्मेदारी दी गई है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फजल का। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने देश में बढ़ती हुई सांप्रदायिक तनाव की घटनाओं पर चिंता जताते हुए सहनशीलता की अपील की है। राष्ट्रपति मुखर्जी ने कहा है कि देश में सांप्रदायिक सद्भावना बनाए रखना जरूरी है। वो अपने ऊपर लिखी एक पुस्तक की रिलीज पर हुए एक समारोह में बोल रहे थे। जुबैर अहमद की रिपोर्ट।
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि भारतीय सभ्यता के बुनियादी मूल्यों को बनाए रखा जाना चाहिए। पिछले हफ्ते दिल्ली के नजदीक दादरी में गोमांस के कथित तौर पर खाए जाने पर एक मुसलमान की हत्या पर हुए हंगामे के बाद राष्ट्रपति मुखर्जी का ये पहला बयान था। अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन आज अपने ऊपर लिखी गई एक पुस्तक के रिलीज किए जाने के अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय सभ्यता को नकारा नहीं जा सकता।
We cannot allow the core values of our civilization to be wasted.
विविधता, सहनशीलता और बहुलता के बुनियादी मूल्यों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। हम भारतीय सभ्यता के इन मूल्यों से भटक नहीं सकते। ये थे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के शब्द। राष्ट्रपति का ये लिखित भाषण नहीं था, वो 15 मिनट तक बोले, जिसके दौरान उन्होंने अपने लंबे सियासी करियर पर चर्चा की और अपने भाषण के अंत में उन्होंने कहा कि भारत ने बहुत तरक्की की है, भारतीय मूल्यों से किसी को हटना नहीं चाहिए। इस सभा में गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे, जिन्होंने आज एक बयान में कहा कि सांप्रदायिक सद्भावना को तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पिछले हफ्ते दादरी में 50 वर्षीय मोहम्मद अखलाक की हत्या पर देश भर में तीखी प्रतिक्रियाएं हुई थी। विपक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी की इस बात के लिए आलोचना की है कि उन्होंने इस कांड पर अब तक कोई बयान नहीं दिया है। जुबैर अहमद, बीबीसी दिल्ली।
मेडिकल चैरिटी संस्था MSF ने कहा है कि अफगानिस्तान के कुंदूज में उसके अस्पताल में हुए अमरीकी वायुसेना के हमले की जांच जिनेवा कन्वेंशन के तहत बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी जांच आयोग को सौंपी जाए। अमरीकी नेतृत्व वाली वायुसेना के इस हमले में 10 मरीजों और MSF के 12 स्वास्थ्यकर्मियों की मौत हो गई थी। उधर अमरीकी सैन्य अधिकारियों का कहना है कि यह हमला गलती से हुआ था, लेकिन MSF ने सेना के इन दावों को खारिज किया है। बीबीसी संवाददाताओं का भेजा ब्यौरा सुना रहे हैं रोहित जोशी।
जेनेवा कन्वेंशन के तहत गठित किए गए इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन फैक्ट फाइंडिंग कमीशन यानी IHFFC को मामले की जांच सौंपने की मांग करते हुए मेडिकल चैरिटी संस्था मेडिसा सों फ्रंटियर की अध्यक्ष डॉक्टर जॉयनी लियू ने बताया कि क्यों उनकी संस्था अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी जांच आयोग से इस मामले की जांच करवाना चाहती है।
हम लोग अमरीका, नाटो और अफगान सेनाओं की ओर से की जा रही सैन्य जांच पर भरोसा नहीं कर सकते। हमें कुंदूज पर हुए इस हमले की जांच के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी जांच आयोग की जरूरत है, और यही एकमात्र ऐसी संस्था है जिसे खासकर अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानूनों के उल्लंघन की जांच के लिए बनाया गया था। हम सारे ही काबिल देशों से अपील करते हैं कि आयोग को जांच सौंपी जाए और सच को सामने लाने और तनाव वाले इलाकों में अस्पतालों की सुरक्षा को फिर से सुनिश्चित किया जाए।
ये थे मेडिसा सों फ्रंटियर यानी MSF की अध्यक्ष डॉक्टर जॉयनी लियू के शब्द। इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन फैक्ट फाइंडिंग कमीशन यानी अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी जांच आयोग का गठन 1991 में जेनेवा कन्वेंशन के तहत किया गया था। तब से अब तक इसका इस्तेमाल नहीं हुआ है। उधर अफगानिस्तान में मौजूद अंतर्राष्ट्रीय सेना के अमरीकी कमांडर ने कहा है कि इस अस्पताल में गलती से ये हमला हुआ था। उनका कहना है कि अफगान सेना की ओर से मिली जानकारी के आधार पर इस अस्पताल में हमला किया गया था। सैन्य अधिकारी ने कहा है कि इन हमलों का मकसद तालिबान की कुंदूज को कब्जे में लेने की कोशिशों से बचाना था, लेकिन MSF ने सेना के दावों को गलत बताते हुए कहा है कि ये अस्पताल काफी मशहूर था और इस पर हुआ हमला गलती से नहीं हो सकता। संस्था ने आशंका जताई है कि ये हमला एक युद्ध अपराध हो सकता है और इसके लिए इसकी अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी जांच आयोग से जांच कराई जानी चाहिए। कुंदूज में अस्पताल में हुए इस हमले में 10 मरीजों और MSF के 12 स्वास्थ्य कर्मियों की मौत हो गई थी। कुंदूज में तालिबान और अफगान सेनाओं के बीच गोलीबारी जारी है और लोग अपनी जान बचाने के लिए शहर छोड़कर भाग रहे हैं।
कुंदूज में अस्पताल पर हुए अमरीकी हवाई हमले की जांच की मांग। बिहार के भागलपुर को सिल्क नगरी के नाम से जाना जाता रहा है, मगर आज ये शहर अभाव और बेरोजगारी की मार झेल रहा है। बुनाई के उद्योग में आई गिरावट की वजह से इस पूरे इलाके से बड़े पैमाने पर पलायन हो रहा है, मगर इन दिनों यहां चुनावों के प्रचार में बुनियादी मुद्दों के बजाय जात और धर्म का ही सहारा लिया जा रहा है। बीबीसी संवाददाता सलमान रावी ने भागलपुर के जवाहरी चौक पर जमा शहर के नौजवानों से जानना चाहा कि वो किस रूप में देख रहे हैं इस चुनाव प्रचार को।
यह है भागलपुर के जवारी रोड का इलाका, चाय की दुकान है, नौजवान कुछ बच्चे यहाँ पे खड़े हैं। भाई साहब, ये चुनाव का माहौल फिर से गर्म है, काफ़ी जोश है यहाँ पर है। लेकिन एक बात बताइए कि अभी कुछ दिन पहले लोकसभा के चुनाव खत्म हुए और फिर ये विधानसभा के चुनाव आए, कोई फ़र्क पड़ा है भागलपुर के लिए? मैं तो देख रहा हूँ कि चांदनी चौक और जामा मस्जिद के इलाके में जो भीड़ भाड़ रहती है, सदर बाज़ार में उससे बुरा हाल है, सड़कों का दो दो घंटे जाम लगा हुआ है शहर में।
तो बोले क्या अगर बाईपास रोड चालू हो जाएगा तो भागलपुर का सभी हो जाएगा।
देखिए एक बात और हम बताना चाहते हैं कि आप लोग मीडिया चैनल वाले मतलब ये जाति रंग दे रहे हैं ये चुनाव को, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ से ज्यादा हरियाणा में है, गुजरात में है, मगर वो आप तो नहीं दिखा,
बिहार को ही बदनाम करते हैं।
हाँ बिहार को बदनाम आप भी करते हैं, आप भी करते हैं इस बात मुद्दे को उठाकर, और ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जाके हरियाणा में देखिए फगाना कांड जान रहे हैं आप, अभी एक दलित को यूपी में मंदिर नहीं घुसने दिया, काट दिया गया, ऐसा आपको बिहार में लगा घूमते हुए हैं? तो यहाँ जो है ना शक्ति संतुलन कर दिया है कि ना उच्च वर्ग ज़्यादा ताकतवर है ना दलित, दोनों बराबर है, तो यहाँ कोई जातिवाद नहीं है।
77 गरीब की लड़ाई है ज़्यादा।
हाँ 77 गांव में गुजरात में मतलब कि मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता दलितों को, ये जो मोहल्ला है ना ये दलितों का है, और आप यहाँ देखिए दलितों ने सरकारी रोड नहीं बनवाया, अपने पैसा से बनवाया, नाली अपने पैसा से मैंने बनवाया, और हम लोग को कोई सरकार से मदद नहीं मिला, आप जाके देख सकते हैं।
तो ये ज्यादातर दलितों का इलाका है जो ये
जवाहरीपुर इलाका।
ये बताइए साहब कि क्या मुद्दे हैं यहाँ के नौजवानों के, दलित नौजवान
की यातायात का जो है सुविधा हो, दूसरी बात है महंगाई के मुद्दे पे, जो महंगाई इतना छुआ जा रहा है कि उस पर सरकार ध्यान दे, अभी तक कुछ नहीं हुआ, महंगाई काफ़ी ज़्यादा जा रहा है, इस पर जो है सरकार का अपना जो हो उस पर सरकार ध्यान दे, और जो है अपना स्कूल कॉलेज सारा चीज़ में जो है मैंने विधि व्यवस्था जो हो छात्र छात्राओं के लिए ये सुविधा रहे।
सर ये यहाँ पर भागलपुर में इश्यूज क्या हैं लोगों के, सबसे
सबसे पहला इश्यूज है कि यहाँ पर रोजगार नहीं है, ठीक है, शिक्षा का जो लेवल है वो थोड़ा डाउन है, शिक्षा का लेवल बढ़ना चाहिए, प्लस प्लेसमेंट होना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, पढ़ाई करने के बाद रोजगार नहीं मिलता, आदमी को बाहर जाना पड़ता है, उसके बाद आप जब पॉलिटिक्स में आते हैं तो जात पात के नाम पर आप वोट लेते हैं, डेवलपमेंट का कोई काम नहीं करते,
कोई नहीं काम होता,
सत्ता में आने के बाद आप डेवलपमेंट का कोई काम नहीं करते, 5 साल बीत जाता है आप 100 वैकेंसी निकालते 50 वैकेंसी निकालते हैं, बेरोजगारी का संख्या हजारों में है, आप क्या कर रहे हैं, जात के नाम पर वोट मांग लेते हैं, न सड़क का सुविधा है, न कहीं सुरक्षा है और ना ही रोजगार है।
भागलपुर को इसलिए भी जाना जाता है कि यहाँ बहुत संवेदनशील इलाका है, हमेशा दंगे फसाद की नौबत आती है, कभी मंदिर में कुछ फेंक देता है, कभी मस्जिद में कोई कुछ फेंक देता है,
ऐसा कोई बात नहीं
है। कितने दिन के बाद मतलब ये हुआ, जब चुनाव जो नजदीक हुआ है, जो ये हल्ला हुआ है, ये बहुत दिन के बाद हम लोग सुन रहे हैं, मतलब 20-22 साल के बाद, ये 20-22 साल के पहले जो दंगा,
ये सब मुद्दा जो है मैंने इलेक्शन के ही मुद्दे पे होता है और कहीं कुछ नहीं है, हम लोग आपस में सही हैं,
हम लोग का खत्म हो जाएगा, आप जब रोजगार देने लगिएगा, आदमी व्यस्त होगा काम में, 2 पैसा कमाने लगेगा, ना दंगा होगा ना फसाद होगा, कोई चीज़ नहीं होगा, शिक्षा का लेवल और रोजगार ये 2 चीज पे ध्यान देना,
बस काम चाहिए रोजगार चाहिए, बस यही मुद्दा है मेरा, रोजगार चाहिए सब लड़का लोग।
तो सुना आपने कि यहाँ जवाहरी नगर के जो भागलपुर का ये इलाका है, यहाँ के नौजवान लड़के जो हैं उनका कहना है कि जात पात कोई मायने नहीं रखता, यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा विकास का है, रोजगार का है, पलायन का है, जिसको लेकर ज़्यादातर राजनीतिक दलों ने चुप्पी साध रखी है और इसी बात का आक्रोश इन नौजवानों में है। सलमान रावी, BBC, जवाहरी नगर, भागलपुर।
जैसा कि आपने सुना बिहार विधानसभा चुनाव का प्रचार जोरों पर है, पहले चरण का मतदान 12 अक्टूबर को होगा। जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल का महागठबंधन हो या फिर भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाला NDA, दोनों ही अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। बिहार चुनाव में भाजपा की साख और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा दोनों दांव पर है। हमारे सहयोगी सलमान रावी ने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहनवाज हुसैन से बात की और पूछा कि उन्हें क्यों भरोसा है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी।
इन 35 सालों में कोई भी भला यहाँ बिहार का नहीं हुआ है, एक फैक्ट्री नहीं लगी, एक रोजगार नहीं मिला, यहाँ के लोग आज भी दर दर भटकने को मजबूर हैं।
लेकिन एक बात तो है कि जो हालत थी बिहार की उससे टर्न अराउंड तो हुआ है, सड़कें बनी हैं, बिजली इंप्रूव की है।
देखिए सड़कें तो BJP के पास वो विभाग था और जितना नंद किशोर यादव कर सकते हैं उन्होंने किया था, सड़कें इंप्रूव हुई है, और सब राज्य में सड़क की चर्चा भी नहीं होती है, नागालैंड में सड़क खराब है, सिक्किम में खराब है, पूरे देश में सड़क इंप्रूव हुई है। तो दिक्कत ये है कि सिर्फ साइकिल दे दिया और सड़क के गड्ढे भर दिए, इसी पर बिहार चलेगा 10 साल से। हम लोग सरकार में थे लेकिन सरकार में हमारी हैसियत तो कुछ थी नहीं,
आपके कभी बहुत करीब हुआ करते थे नीतीश कुमार, कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी 2014 में उनकी काफ़ी तारीफ की थी, ये अचानक जो है तलखियाँ इतनी क्यों बढ़ गई हैं?
नहीं, तलखियाँ नहीं बनी। देखिए बात यह है कि जिस दिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर 5 साल बहुत अच्छा काम किया, जब बीजेपी साथ थी जो पहला टर्म, उसके बाद लोगों ने उनको चढ़ा दिया, कई लोग कहने लगे ये पीएम मटेरियल है। शिवानंद तिवारी ने कहा कि बिहार मॉडल पिछड़े राज्य का प्रधानमंत्री होना चाहिए। जिस दिन से वो प्रधानमंत्री का ख्वाब देखने लगे, बिहार के लोगों के ख्वाब को उन्होंने मार डाला।
चाहे वो महागठबंधन हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, अब ये पहले चरण में पूरे मुद्दे गौन होकर और ये बीफ का मुद्दा उछलने लग रहा है। लालू प्रसाद यादव कुछ बयान दे रहे हैं, गिरिराज सिंह कुछ बयान दे रहे हैं, तो ये मामला जो है वो डेवलपमेंट से हटकर बिल्कुल वो दादरी वाला जो है।
देखिए जहाँ तक सवाल है बीफ पर बयान किसने दिया, लालू जी ने दिया, तो क्या करें। अब चुनाव के अंदर जब वो कोई सवाल खड़ा करेंगे तो उस पर जवाब होगा। तो रामकृपाल यादव ने कहा कि हमें शर्म आती है कि एक यदुवंशी इस तरह की बात कर रहा है। आज तो बिहार में मुसलमान भी बीफ नहीं खाते, लेकिन लालू यादव कह रहे हैं कि हिंदू भी खाते हैं। तो ये मुद्दा चुनाव में क्यों लाए वो? सवाल आप करेंगे तो जवाब मिलेगा।
तो अब चारों तरफ तो सब यही चर्चा हो रही है कि बीफ पे किसने क्या कहा।
क्या करें, लालू जी पर चुप हो जाए, खामोश हो जाए। आप सवाल करेंगे तो जवाब मिलेगा, आपके हर सवाल का जवाब है।
एक आखिरी सवाल आपसे है, वो है असदुद्दीन ओवैसी को लेकर, कि उनकी एंट्री बिहार की पॉलिटिक्स में, उनका डेब्यू हुआ है एक तरह से इस विधानसभा के चुनाव में, कितना इम्पैक्ट होगा उनका मुस्लिम वोटर्स के ऊपर या मुस्लिम्स के?
हैदराबाद की गलियों से बाहर तो डेब्यू हुआ नहीं आज तक, पूरे आंध्रा में हुआ कहीं?
महाराष्ट्र में जीता?
नहीं नहीं, वो महाराष्ट्र में, आंध्रा में हुआ क्या, जहाँ के वो हैं उस प्रदेश में हुआ। महाराष्ट्र में उनका एक दो MLA जीत गया, वो भी ट्रायंगुलर फाइट में। असदुद्दीन ओवैसी या अकबरुद्दीन ओवैसी समाज को तोड़ने वाले लोग हैं, वो सिर्फ समाज को तोड़ने की बात करते हैं, हम समाज को जोड़ने वाले लोग हैं। वो आए हैं यहाँ तो हर कोई पार्टी, बहुजन समाज पार्टी भी लड़ रही है, दमकीपा खत्म हो गई थी, कोई उसको भी जिंदा करके लड़ सकता है, और कोई निशान नहीं मिले तो निर्दलीय भी लोग लड़ सकते हैं, इसमें क्या फ़र्क पड़ने वाला है, कोई कैसे भी लड़े। अगर असदुद्दीन हमारे एजेंट हैं ये लोग कह रहे हैं, तो इससे बड़ी झूठ तो कोई बात हो नहीं सकती। हम नदी के दो पार्ट हैं, हम मिल नहीं सकते, तो हमारा उनका कोई साथ नहीं है। सिर्फ कहने की बात है कि वो जो नीतीश कुमार के ख्वाब में खलल डाल दे वो BJP का एजेंट हो जाता है।
भारतीय जनता पार्टी के नेता शहनवाज हुसैन।
दुनिया की बड़ी खबरें BBC के साथ सोमवार से शुक्रवार देखिए TV पर BBC दुनिया, ETV नेटवर्क के हिंदी और उर्दू के सभी चैनलों पर।
नमस्कार, स्वागत है आप सबका, ये है BBC दुनिया, मैं हूँ सुमिरनप्रीत कौर।
यहाँ आकर वो लोगों को गले लगाते हैं और कहते हैं हम अब आजाद हैं, उससे बात करने में बहुत मजा आता है,
तो देखना मत भूलिए BBC दुनिया शाम 9:20 पर ETV के साथ साथ bbchindi.com और BBC हिंदी के YouTube चैनल पर भी। BBC दुनिया,
ये BBC है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फदल के साथ। दादरी में गोमांस खाने की अफवाह पर अखलाक नाम के व्यक्ति की हुई हत्या ने जहां एक ओर पूरे देश में बहस खड़ी की है, वहीं दूसरी तरफ अखलाक का परिवार अब भी अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित है। अखलाक के बेटे सरताज भारतीय वायुसेना में चेन्नई में सेवारत हैं, उन्होंने अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की है। हालांकि सरताज का कहना है कि गांव और घर के साथ उनकी कई यादें जुड़ी हैं, इसलिए वो गांव हमेशा के लिए तो नहीं छोड़ेंगे, लेकिन परिवार की सुरक्षा को देखते हुए वो कुछ समय के लिए गांव छोड़ने की सोच रहे हैं। सरताज से हमारे सहयोगी रोहित जोशी ने इस बारे में बात की।
मैं अपनी फैमिली में अकेला हूँ, मैं मेल मेंबर, मुझे ड्यूटी भी करनी है एयरफोर्स में, और दानिश जो मेरा भाई छोटा जो ICU में है अभी, वो अभी इस लायक नहीं है कि वो केयर कर सके, उसकी खुद केयर करनी है। मैं सभी परिवार में अब लेडीज ही हैं, उनकी देख रेख करने की जिम्मेदारी मेरी ही है। मैं ड्यूटी करूंगा या फिर गांव में उनको जाकर देखूंगा तो ये मेरे लिए बहुत मुश्किल बात हो जाएगी, तो मैं उसके लिए टेम्पररी बेसिस, मैं घर तो नहीं छोड़ने वाला क्योंकि उससे मेरी मेमोरीज जुड़ी हुई है, मेरे दादा परदादा उसी घर में रहे हैं, लेकिन मैं कुछ समय के लिए अपनी फैमिली को अपने साथ रखूंगा जब तक कि दानिश पूरी तरीके से ठीक ना हो जाए और कुछ मामले ना सुलझ जाए।
अच्छा, कहाँ परिवार जाएगा अभी आपका?
जी देखो, अभी कहाँ जाएगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि कहीं एयरफोर्स में शिफ्ट करा दूं या किसी प्रशासन से गुहार लगाऊं कि कोई मदद की आवश्यकता हो कि इनकी सुरक्षा की हो, तो दोनों तरीके से मैं देखूंगा जो बेस्ट ऑप्शन होगा उसमें।
अच्छा, तो ये गांव छोड़ने का कोई दबाव वगैरह तो आप पर नहीं है ना इस तरह का, या खतरा महसूस कर रहे हो इस वजह से?
हाँ, बिल्कुल खतरा तो महसूस है कि मैं अकेला हूँ और मैं फैमिली यहाँ रखूंगा तो मेरे दिल में हमेशा डर का रहेगा। दबाव नहीं है, बस डर जरूर है।
तो अभी आपने डिसाइड नहीं किया है कि आप कहाँ जाकर रहेंगे, कहाँ परिवार को लेके जाएंगे? आप कहाँ पोस्टेड हैं?
मैं अभी चेन्नई में पोस्टेड हूँ।
चेन्नई परिवार को ले जाना आप चाह रहे हैं? अभी
देखो, चाहना तो मैं नहीं चाह रहा कि मैं चेन्नई ही लेकर जाऊँ, ये पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि एक इतना बड़ा घटना हुई है साथ में, तो उनका दुख बांटने के लिए परिवार वाले के साथ साथ रिश्तेदार की भी जरूरत होती है। चेन्नई में बहुत दूर हो जाएगा, जो रिश्तेदार भी नहीं आ पाएंगे, मैं ड्यूटी करूंगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा उनको दुख को संभालना। तो कहीं ऐसी जगह हो जो पास में ही हो, सेफ हो, सुरक्षित हो।
अखलाक के बेटे सरताज से बात कर रहे थे रोहित जोशी। कारोबार की दुनिया में कहा जाता है कि देर इज नो फ्री लंचेस, यानी कहीं भी मुफ्त भोजन नहीं मिलता। तो फिर फेसबुक अविकसित देशों के गरीब लोगों को मुफ्त इंटरनेट क्यों देना चाहता है? क्या ये सचमुच मुफ्त है या फिर internet.org के जरिए कुछ ऐसा करने की कोशिश है जिससे दुनिया कुछ मुट्ठी भर लोगों के नियंत्रण में आ जाएगी? इस बार की दुनिया जहान में निखिल रंजन ने यही जानने की कोशिश की है।
दुनिया जहान। बीते साल भारत आए फेसबुक वाले मार्क जकरबर्ग ने दिल्ली में कहा,
We believe that connectivity is a human right.
अब वही जकरबर्ग अपनी कंपनी के जरिए मानवाधिकार की तरह लोगों को इंटरनेट बांटने के अभियान में जुटे हैं।
सूरज और हवा से चले जिंदगी, ये मिले फिर भी फ्री।
जादू भरी माँ के हर थपकी, मिले फिर भी फ्री।
आज इंटरनेट नहीं तो अधूरी है जिंदगी,
तो क्यों नहीं फ्री?
खास तौर से भारत समेत उन देशों में जहां आबादी का एक बड़ा हिस्सा विकास की दौड़ में पीछे और बुनियादी सुविधाओं से दूर है। मुट्ठी भर कंपनियों को साथ लेकर फेसबुक ने internet.org सेवा शुरू की। बाद में इसका नाम बदलकर फ्री बेसिक्स कर दिया गया। फ्री बेसिक्स का इस्तेमाल करने वालों को इंटरनेट की सेवा अलग से नहीं लेनी पड़ती और न ही उसके लिए कोई पैसा देना होता है। साइबर तकनीक से जुड़ी वेबसाइट मीडिया नामा के प्रमुख निखिल पाहवा इसे इंटरनेट मानने से इनकार करते हैं।
लोगों को जो फेसबुक के थ्रू, ये जो internet.org के थ्रू मिल रहा है, वो इंटरनेट नहीं है, वो कुछ गिनी चुनी सर्विसेज हैं। तो हमारे हिसाब से तो ये लोगों को ठगा जा रहा है, उनको ऐसे बताने की कोशिश की जा रही है कि ये इंटरनेट है। एक सर्वे किया गया था इंडोनेशिया में, उसमें क्योंकि फेसबुक की फ्री सर्विसेज भी इंडोनेशिया में है और लोगों को वहां पे लग रहा था कि वो इंटरनेट पे है ही नहीं, पर जब उनसे पूछा गया कि आप फेसबुक पे हैं, तो उन्होंने बोला कि हाँ वो हैं। तो बात ऐसी है कि फेसबुक इंटरनेट नहीं है, पर ये कोशिश की जा रही है कि वो इंटरनेट बन जाए, कि लोगों को फेसबुक के बाहर कुछ पता ही नहीं लगे और इससे फेसबुक का ज्यादा डोमिनेंस होगा।
जकरबर्ग ने जब इंटरनेट को मानवाधिकार बताया तो निश्चित रूप से उन्हें इस बात की जानकारी रही होगी कि वो धरती के उस हिस्से में खड़े हैं जहां लोगों के पास मोबाइल फोन ज्यादा और शौचालय कम हैं। बावजूद इसके उन्होंने इंटरनेट को ही आगे बढ़ाने के बारे में सोचा। फेसबुक का मानना है कि इसके जरिए लोगों की जिंदगी में भारी बदलाव आ सकता है और इंटरनेट से उन्हें दूर रखना एक तरह से उनके साथ ज्यादती है, उन लोगों को भी जिन्हें पीने का साफ पानी तक नसीब नहीं होता। साइबर तकनीक के जानकार प्रशांत ओके राय,
भारत की जो 30 करोड़ इंटरनेट पॉपुलेशन है उसमें लगभग 90% के ऊपर मोबाइल इंटरनेट यूजर, और उन 90% में लगभग आधा से ज्यादा, लगभग 50-60% लोग या तो व्हाट्सएप या फेसबुक यूज करते हैं। तो फेसबुक एक बहुत बड़ा ड्राइवर है इंटरनेट अडॉप्शन के लिए। अब internet.org उनका प्लान ये है कि अफोर्डेबल इंटरनेट एक्सेस, जो कि फेसबुक और दूसरी एप्लीकेशन जो सपोर्टेड हो, वो अगर दिया जाए तो अभी 1 बिलियन लोग इंटरनेट पे हैं। अब अगला 1 बिलियन कहाँ से आएगा, उनके लिए कैसे अफोर्डेबल एक्सेस दिया जाए, तो उनका प्लान ये है। ये कोई चैरिटेबल कॉज तो नहीं है, ये है कि और लोगों को कैसे फेसबुक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए।
अगर ये मान लिया जाए कि इंटरनेट हासिल होने के बाद लोगों के पास सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने और बुनियादी सुविधाओं को हासिल करने के बेहतर तरीके होंगे तो भी सेवा पर संदेह की गुंजाइश बनी रहती है, क्योंकि अगला सवाल इंटरनेट की निष्पक्षता का है। चुनिंदा कंपनियों के नियंत्रण के साए में हासिल इंटरनेट देश में दो किस्म की सेवाओं को जन्म देगा, एक तो वो जो पैसे देकर इंटरनेट का उपयोग करेंगे और दूसरे वो जो बिना पैसे दिए फेसबुक और उसके नेटवर्क वाली कंपनियों को देख सकेंगे। निखिल पाहवा,
आज के दिन में टेलीकॉम ऑपरेटर डिसाइड कर सकता है कि फेसबुक की जो ये सर्विसेज हैं ये फ्री हैं और बाकी सर्विसेज फ्री नहीं है। ये दो किस्म की सर्विसेज बना देता है, जबकि नेट न्यूट्रलिटी का मतलब ये है कि जो टेलीकॉम ऑपरेटर है या जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो कभी नहीं चूज करता कि आप क्या देख सकते हैं क्या नहीं देख सकते, कितनी तेजी से एक साइट लोड हो सकती है दूसरे के मुकाबले, और तीसरा कि आपके लिए एक साइट एक्सेस करना ज्यादा महंगा है या सस्ता। ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो है इंटरनेट का, उसकी वजह से क्या हुआ है कि इतनी इनोवेशन हुई है। इंटरनेट आज इतना इम्पोर्टेंट है सबकी जिंदगी में क्योंकि सब इक्वल हैं। मैं भी एक साइट चालू कर सकता हूं जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी के अगेंस्ट कम्पीट कर सकता है, और फेसबुक भी ऐसे ही आया, गूगल भी ऐसे आया था। जब गूगल आया था तब 7 अलग अलग सर्च इंजन थे जिनको गूगल ने हराया। फेसबुक जब आया था तब 2-3 और सोशल नेटवर्क थे, ऑर्कुट था, माइस्पेस था, जिनको फेसबुक ने हराया। ये internet.org जैसी चीज अगर चल गई और अगर गूगल भी अपनी एक और ऐसी सर्विस ले आए तो वो कॉम्पिटिशन सिर्फ गूगल और फेसबुक के बीच में रहेगा। गूगल, फेसबुक, एप्पल और अमेजोन के बीच में दुनिया बढ़ जाएगी।
बात यहीं खत्म नहीं होती। इंटरनेट की वजह से आंकड़ों के सुरक्षा और निजता का मसला भी उतना ही बड़ा है, खास तौर से जब एक ही कंपनी इतनी बड़ी तादाद में लोगों को अपनी सेवा के दायरे में लाने की कोशिश कर रही हो। बीते साल आम लोगों से लेकर राष्ट्र प्रमुखों तक की जासूसी की खबरों से कुख्यात हुई अमरीकी खुफिया एजेंसियों का डर अभी खत्म नहीं हुआ है।
सारा का सारा यूजर डेटा जाता है फेसबुक के पास, फेसबुक वो डेटा स्टोर करता है अमेरिका में। यूरोपियन यूनियन का जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसकी एक रूलिंग आई है जिसमें उन्होंने बैन कर दिया है डेटा ट्रांसफर यूरोप से अमेरिका तक, क्योंकि अमेरिका में सर्वेलेंस हो रहा है फेसबुक डेटा का, गूगल डेटा का। तो उन्होंने बोला है कि यूरोपियन यूनियन का डेटा सिर्फ यूरोप में रहेगा, और उसी तरीके से हमें भी ऐसा कुछ करना चाहिए क्योंकि सारे देशवासियों का डेटा सारा पुल करके यूएस में भेज देंगे, तो ये नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न भी है।
डर लोगों की निजता पर खतरे को लेकर भी है, जिसे भारत में सख्त कानूनों की कमी और बढ़ा देती है। प्रशांत ओके रॉय,
इंडिया में कोई प्राइवेसी लॉज नहीं है और इन प्राइवेसी लॉज जो है वो बहुत वीक है, तो इसलिए लोगों को आइडिया भी नहीं है प्राइवेसी का मतलब क्या है और क्या लॉज क्या चीज वो डिपेंड कर सकते हैं प्राइवेसी के रेल में, प्राइवेसी के एरिया में। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन मांगता है कुछ भी, वो अगर किसी भी टाइप का गवर्नमेंट या कोई पुलिस का आदमी हो कुछ भी हो, वो फोन पे ही लोग दे देंगे इन्फॉर्मेशन। तो अभी कोई डेटा प्रोटेक्शन लॉज ठीक से नहीं आए हैं यहाँ पे जिसके कारण प्राइवेसी को प्रोटेक्टेड हो।
फेसबुक ने जन्म लेने के एक दशक के भीतर 1 अरब से ज्यादा लोगों को अपना नागरिक बना लिया और अब उसकी कोशिशें अपनी आबादी 1 अरब और बढ़ाने की है। खेल खेल में फेसबुक की नींव रखने वाले ज़करबर्ग के खाते में एक दशक का अनुभव और सबसे सफल साइबर कारोबार में से एक के नेतृत्व का श्रेय है। फर्क आया है तो बस इतना कि अब दुनिया पहले से कुछ अधिक पढ़ी लिखी, जागरूक और अपने लिए ज्यादा मांग करने वाली है। निखिल रंजन, BBC दिल्ली।
अब चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर।
BBC समाचार। कुछ हालिया हिंसक घटनाओं के संदर्भ में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि लोगों को देश में विविधता का सम्मान करना चाहिए और एक दूसरे के प्रति सहिष्णुता दिखानी चाहिए। रूस ने कहा है कि उसने कैस्पियन सागर में अपने युद्धपोतों से सैकड़ों किलोमीटर दूर सीरिया में इस्लामिक स्टेट के ठिकानों पर 26 मिसाइलें दागी हैं। हालांकि अभी इसकी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। इस साल का रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों टॉमस लिंडाल, पॉल मॉडरिश और अजीज सेंकर को दिया जाएगा। उन्हें ये पुरस्कार डीएनए की मरम्मत पर उनके अध्ययन के लिए दिया जा रहा है। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में हुई गोलीबारी में देश के राष्ट्रपति हसन शेख मोहम्मद के भतीजे लिबान उस्मान की मौत हो गई है और यूरोपीय संघ ने भूमध्य सागर के रास्ते होने वाली मानव तस्करी को रोकने के लिए एक अभियान शुरू किया है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। ये कार्यक्रम आप तक पहुंचाने में मदद की शाकिर आलम ने। रेहान फतल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।